ઉપજ્યો સાંગ સોબી સાંગ નાવો યાદ લે રે મના યાદ લે યાદ લે માત પિતા સુત બંધુ જાન માત પિતા સુત બંધુ જાન જેત જાસ્યો કીના જીયુ છૂટ્યો જબ દેતે દારે આગન મે દીના જાગ લે ઓ રે મના જાગ લે ઓ રે મના સા ગાફિલ સોયા જો તને ઉપજ્યો સાંગ ઈ સોબી સાંગ ના હો જાગ લે મોરે મના જીવત નો વ્યવહાર હૈ જીવત નો વ્યવહાર હૈ જગ કો તુમ જાનો નાનક હર ગુણ ગાયલે સબ સ્વપ્ન સમાનો જાગ લે ઓ રે મના હર જસ ગાયલે મના હર જસ રે મના ગાયલે જો સંગી હૈ તેરો અવસર બીત્યો જાત ગયો માન લે મેરો જાગ લે ઓ રે મના જાગ લે ઓ રે મના સંપત રસ ધન રાજ સ્યો અતિ ને હો લગાયો કાલ ફાંસ જબ ગલ સબ ભાયો પરાયો જાગ લે ઓ રે મના રાહુલ સોયા જો તને ઉપજ્યો સાંગ ઈ તો ભી સાંગ ના હોયા જાગ લે ઓ રે મના જાન બુઝ કે બાવરે જાન બુઝ કે બાવરે તે સાજ બિગાડ્યો પાપ કરત સુખ્યો નહીં ના ગર્ભ નિવાર્યો જાગ લે ઓ રે મના જે વિદ ગુરુ ઉપદેશ્યા જે વિદ ગુરુ ઉપદેશ્યા તો સુન રે ભાઈ તો સુન રે ભાઈ નાનક કહેત પુકાર કે ગાવો પ્રભુ શરણાઈ જાગ લે ઓ રે મના હા ગાફિલ સોયા જો તન ઉપજ્યો સાંગ ઈ તો ભી સંગ ના હો
જિસ નજર સે સંત મહાત્મા દુનિયા કો દેખતે હૈ વો નજર કોઈ ઓર હૈ ઉનકી આત્મા મન સે આઝાદ હોકર અપને આપ કો જાન ચુકી હૈ ઓર અપને આપ કો જાન કર પ્રભુ મેં અભેદ હો ચુકી હૈ વો માઉથ પીસ ઓફ ગોડ બન જાય જૈસે મેં આવે ખસમ કી બાણી તૈસા કરી જ્ઞાન મેં લા લો કે જૈસે મુજે માલક અંતર સે કહાતા મેં કહેતા હું મેં અપને આપ કુછ નહીં કહે રહા ગુફતે ઓ ગુફતે અલ્લાહબાદ ગર્ચિયા હુકુમે અબ્દુલ્લાબાદ ઉનકા કહા હુઆ પ્રભુ કા કહા હુઆ હોતા હૈ વો દાયરા શકલ મેં વો ઇન્સાની ગલે સે આવાજ નિકલતી માલૂમ હોતી કૈસે કુછ ક્યા દેખતે ક્યા ઇન્સાન તો ભૂલ મેં જા રહા હૈ તું ગફલત મેં સો રહા હૈ વો માયા સબો જગ સોયા એ ભરમ કહો કે જા, દુનિયા સારી સો રહી ભૂલ મેં જા રહી. માયા કહેતે ભૂલ કો, વો ભૂલ ક્યા હૈ? એ શરીર ભૂલ હૈ માયા, જિસ્મ સે શરૂ હોતી હૈ. હમ આત્મા દેદારી હૈ, જિસ્મ કા રૂપ બન ગયે, યહી બડી ભારી ભૂલ. આત્મા દેદારી બનને પર હમ આત્મા કે લેવલ સે દુનિયા કો દેખેંગે, મગર હમ જિસ્મ કા રૂપ બન ગયે, જિસ્મ કે લેવલ સે દુનિયા કો દેખ રહે હૈ. વહી ચીજ હૈ કુછ ઓર, નજર કુછ ઓર આ રહી. સારે વેદ શાસ્ત્ર કહેતે હૈ કે જગત અસત હૈ, આત્મા સત હૈ. અસત સે મુરાદ બદલને વાલા, એક રસ ના રહેને વાલા. મગર હમે ક્યા માલુમ હોતા સત. યે જિસ્મ ઓર જગત સારા હી મેટર કા બના હુઆ હૈ. મેટર ઇઝ ચેન્જિંગ, માદા બદલ રહા હર લમ્હા લમ્હા. મગર ક્યોંકિ હમારી આત્મા મનિંદો કે ઘાટ પર જિસ્મ કા રૂપ બની બેઠી હૈ, ઇતની ઇસકે સાથ આઈડેન્ટિફાઈ હો ચુકી હૈ કે યે અપને આપ કો ગો હૈ, આત્મા દેહધારી દેહી સમજ રહા. યહી ભૂલ હૈ. ઓર ફિર દેહ કે લેવલ સે હી સારી દુનિયા કો દેખ રહે. પહેલી ભૂલ કિસ બાત મેં શરૂ હોતી, કે યે જગત યે જિસ્મ હમે સત ભાસતા, વો હમ દેખતે હૈ કે એસે જિસ્મ હમને કઈ બાર અપને કંધો પર ઉઠાયે હૈ, શમશાન ભૂમિ મેં પહોંચા કર અપને હાથો સે દાગ દિયે હૈ, મગર ફિર ભી હમે યકીન નહીં આતા યે જિસ્મ છોડના. યહી ભૂલ. દેખતે હૈ આંખો સે, હાથો સે, કંધો પર ઉઠા કર આગ ભી દેતે હૈ જૈસે જિસ્મ કો, મગર યકીન નહીં કે મેં જિસ્મ હું યા આત્મા. બડી ભારી ભૂલ યહીં સે શરૂ હોતી હૈ. ઇસલિયે જિસ્મ ક્યોંકિ બદલ રહા હૈ, સારા જગત કે ઝરે ઝરે બદલ રહે હૈ. ઇસલિયે જબ દોનો ચીજે એક હી રફતાર સે બદલ રહી હો, તો યહી માલૂમ હોતા હૈ યે ખડી હૈ, સત બહાસ રહી હૈ, હાલાંકિ વો બદલ રહી. અબ ઇસ ભૂલ સે જો નિકલ ચુકે હૈ, વો દેખતે હૈ કે સબ આત્મા દેદારી હૈ. આત્મા કી જાત વહી હૈ જો પરમાત્મા કી જાત હૈ. કુછ દિનો કે લિયે યે જિસ્મ હમકો મૂળ જીવ કા ભાગો સે મિલા હૈ, ઇસમે હમને જાગના થા. હમ અંતર સે સો રહે થે, બાહર ફેલાવ કે કારણ. તો મહાપુરુષ જો જાગ ઉઠે વો કહેતે અરે ભાઈ તુમ સો રહે થે. આત્મા મન કે અધીન, મન આગે ઇન્દ્રિયો કે અધીન, ઇન્દ્રિયો કો ભોગ ખેંચ રહે હૈ. યે બાહર કા રૂપ બના બેઠા, અંતર સે બેસુદ ઓર બેખબર હૈ. યહી સોના. તો જબ જબ મહાપુરુષ આતે તો કહેતે અરે ભાઈ તુમ જાગો. વેદ ભગવાન ને કહા, અવેક અરાઇઝ એન્ડ સ્ટોપ નોટ અંટિલ ધ ગોલ ઇઝ રીચ. જાગો, ખડે હો જાઓ, ઓર ઉસ વક્ત તક ના ઠહેરો જબ તક તુમ મંઝિલ મકસૂદ પર ના પહોંચ જાઓ. યે કબીર સાહેબ ને કહા, જાગ પ્યારી અબ કાહે સોવે, રૈન ગહી દિન કાહે કો ખો. એસો તૈ રો તું જાગ, અબ જીવ કા દિન ચડા હૈ, યે તેરે જાગને કા વક્ત હૈ, તું અબ ભી સો રહી હૈ, જાગેગી કબ? તો યે હૈ નજરિયા ઉન પુરુષો કા, જો જાગ ઉઠે હૈ વો દેખતે હમારે સબ ભાઈ સો રહે હૈ. તેથી જગહ જગહ પર ઇસ બાત પર જાગ લ્યો રે મના, જાગ લ્યો. ક્યો ગાફલ સોયા? અરે મેં તું ગફલત મેં ક્યો જા રહા હૈ? આખર જિસ્મ કો છોડના પડેગા. આજ છોડો, દસ સાલ મેં છોડો, સો સાલ મેં છોડો, છોડના તો પડેગા ના. ઇસકા નામ છોડને કા નામ હૈ ઇંતકાલ કરના, મુંતકિલ હોના, મરના. યે કો હુઆ નહીં, એક તબદીલી કા નામ હૈ. ફિઝિકલ પ્લેન સે ઉપર આ જાના, અગર અભી હમ ઉપર આના સીખ જાય, જિસ્મ સે એનાલાઇઝ અપને આપ કો કર સકે, જિસ જિસ્માનિય સે ઉપર આ સકે, યે દેખને વાલી નજર હમારી દુનિયા કી બદલ જાય. એસે મહાપુરુષ ક્યા કહેતો કે ભાઈ જાઓ, એસો કી બડી ભારી આવશ્યકતા. ક્યોંકિ હમ સબ મંદિરો કે ઘાટ પર જિસ્મ કા રૂપ બને બેઠે હૈ, વો એક એસી હસ્તી હૈ જેને અપની આત્મા કો એસે છુડાયા હૈ, અપને આપ કો જાના હૈ, પ્રભુ અનુભવ કો પારા. જો જાગા હૈ વહી તુમકો જગા સકેગા ના. हाल भी मान लीजिए कि घाट पर अंतर से सो रहे हैं बाहर फैलाव के कारण, ग्रंथाकार भी चातुर भी अमीर और गरीब सब एक भूल में जा रहे हैं। जो जाग उठता है पुरुष वो कहता रहे भाई मैं भी तुम्हारी तरह ही इंसान हूँ, तुम भूल में जा रहे हो, आखिर जिसम छोड़ना पड़ेगा, जीते जी इससे ऊपर आना सीखो। तो ऐसे पुरुष की अति आवश्यकता है। कहो वो क्या समझते हैं, वो कहते हैं हम तुम्हारी तरह ही इंसान हैं, मगर अपनी आत्मा को मान्यता से ऊपर लाकर अपने आप का अनुभव कर रहे हैं, प्रभु अनुभव को पा रहे हैं, तुम भी जागो। मेरा जीवन ही एक जागने का वक्त है। अगर इसमें हम जाग उठे, हमारी आत्मा मान्यता से ऊपर आना सीख गई, जहां मर कर जाना अब जीते जी जाना सीख गए, मौत का खौफ न रहा। मौत में क्या होता, जिसम को आत्मा छोड़ती है। अब जीना जी छोड़ना सीखना है, लर्न टू डाई सो दैट यू मे बिगिन टू लिव। तुम जीते जी मरना सीखो ताकि तुम हमेशा की जिंदगी को पा जाओ। हाँ, मौलाना रूम साहब ने कहा बमीर है दोस्त पेशन मर्ग अगर मेरी जिंदगी खाई, ऐ दोस्त अगर तू हमेशा की जिंदगी चाहता है तो मरने से पहले मरना सीख। ये सब महापुरुष कहते नानक जीविया मर रही है ऐसा योग कमाई, दादू पहले मर रहो पाछे मरे सब को। तो जीते जी अगर इस रात को हम हल कर लें तो हमारे दोनों हाथ लड्डू रहे दुनिया में भी और मर कर भी। ये लोग सुखी है पर लोग सुहेले, हम क्योंकि भूल में जा रहे हैं। जिस मकान की बुनियाद टेढ़ी रख दी जाए कितनी भी मंजिलें ऊपर हो उसके उठारो वो टेढ़ी ही जाएगी। तो जमदा थे जिसम रखने वाले शरीरधारी थे, आत्मा देहधारी थे, ये आत्मा देह को धारण किए हुए था मगर देह का रूप बन गया। यही से भूल शुरू हुई और इसीलिए मोह में फंस कर दुनिया में लंपट हो रहे। बार बार दुनिया में आने का कारण यही है, जहाँ आशा तहाँ मर। अब थोड़ी बहुत अगर हम प्रभु की याद करते नजर भी आते हैं तो वो किस लिए, कि हमारे दुनिया के सामान बने रहे, हमारी रोजी बनी रहे, हमारे बच्चे राजी रहे, फलाना बीमार है ठीक हो जाए, फलानी मुश्किल है आसान हो जाए। परमात्मा को एक मददगार समझकर हम उसकी याद कर रहे हैं तो सच्चे मानों में हम पुजारी किसके हैं, दुनिया को, दुनिया को पाने के लिए प्रभु की याद कर रहे हैं। ऐसे पुरुष मरकर कहाँ जाएंगे, बार बार दुनिया में ही आएंगे, सच्चे पुजारी तो दुनिया के हैं ना। तो जो अनुभवी पुरुष जाग उठे हैं वो कहते हैं हम तुम्हारी तरह ही इंसान हैं और बाकी सब इंसान इंसान सब एक हैं। जिस तरह किसी ने डेवलपमेंट की तरक्की की उस तरफ के राज के जानने वाला हो गया, जो लोग उस तरफ जाना चाहते हैं उसके लिए वो मददगार हो जाता है। एक डॉक्टर है वो तुमको डॉक्टरी सिखाएगा, जो डॉक्टरी सीखना चाहते हैं वो जिस्म की साइंस से माहिर है वो तुमको जिस्म की साइंस सिखला देगा, मगर है इंसान फिर डॉक्टर होगा। इसी तरह एक वकील है वो कानून को समझता है इंसान वो भी, मगर वकालत जो लॉ के कानून से वाकिफ है उसको समझ भी सकता है अप्लाई भी कर सकता है। हम उनको एंगेज करते हैं महाराज हमारा मुकदमा लड़ लो। इसे जो आत्मविद्या के मायने हैं अपने आप का अनुभव किया है और प्रभु अनुभव को पा रहे हैं, जीते जी मंदिरों के घाट के ऊपर जाते हैं और जाग उठे हैं दूसरों को जगाने के वो काबिल हैं, ऐसी हस्ती का नाम गुरु साधु संत और महात्मा। और ऐसे महापुरुषों की बड़ी भारी न मंगाई गई। तो इस वक्त आगे हमेशा मुस्लिम महात्माओं की बानी रखी जाती है, रामायण का कुछ हिस्सा आपके सामने रखा जाएगा। रामायण एक बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, तो उसमें कागभूषण का जिक्र आता है। वो अपनी कथा सुनाते हैं कि भाई मैं क्या था, मैंने क्या किया, क्यों मैंने इस जन्म को पाया। वहाँ गुरु की बड़ी भारी महिमा बतलाई। गुरु शोकार्ड गुरु से मुराद नहीं जो आज दुनिया गुरु से भरी पड़ी है, जहाँ तक बट्टा उठा तो गुरु, गुरु उसी का नाम है जो अंधेरे में प्रकाश करे, गुरु उसी का नाम है गिरी से रूट से निकलता है जो अंतर में प्रणों की ध्वनि को सुना सके। तो नाने गगन ते सो मेरा गुरु, जो जिसको एनालाइज करके पिंड से ऊपर जाता है दूसरों को ले जा सकता है, जिसकी अंतर की आंख खुली है प्रभु की परमात्मा की ज्योति को देखता है, दूसरों को दिखा सकता है। वो अखंड कीर्तन जो उद्योगी हो रहा है, श्रुति हो रही है, उसको वो खुद सुनता है, दूसरों को सुना सकता है। अरे भाई जीते जी पृथ्वी ऊपर लाकर आप सफर करता है, दूसरों को ऊपर ले जाने का मार्ग क्या एक्सपीरियंस ले सकता है। ऐसे पुरुष का नाम साधु संत और महात्मा। आपको पता हो राजा जनक को सारे हिंदुस्तान भर में दो सम्मेलन करने के बाद एक अष्टावकर मिले जो जीते जी इस राज को समझा सके, एक्सपीरियंस दे सके। राजा जनक से पूछा आखिर अष्टावकर ने, क्यों भाई ज्ञान हो गया? कहते हाँ महाराज हो गया। लेने वाला कहे मुझे कुछ मिला? तो वो पुरुष भी हमारी तरह ही इंसान ही है, मगर वो इंसान होते हुए उन्होंने आत्म पहलू को, आत्मक अध्यात्म सिलसिले को बढ़ाया। वो हम में भी वैसे ही हकूक है, ये नहीं कि उनके लिए खास स्पेशल कंसेशन रखा गया है। हमने जिस्म के तौर पर बुद्धि के लिहाज से, बाहरी इलूमों के लिहाज से प्रतीत किया है, जो उस इलम को सीखना चाहे हम उनको सिखला सकते हैं, मगर हमारा आत्मा का पहलू बहुत कमजोर है। वी नो लिटिल आर नथिंग। तो आत्म विद्या अध्यात्म पुरुष जो अध्यात्मक पुरुष जो हो गया, वो देख रहा है कि वो मुझ में काम कर रहा है। आई एंड माई फादर आर वन। जैसे मैं आवे खसम की वाणी तैसा करी गया मिला लो। तो ऐसा पुरुष जो है उसका नाम साधु संत और महात्मा। अगर हम इस सोई हालत से जाग से उठना चाहते हैं, जागना चाहते हैं, तो जागते हुए पुरुषों की सोबत हो। हमारा आलम खुफ्ता तो हम खुफ्ता, खुफ्ता खुफ्ता क्या कुरन बेदार। सारा जहां सो रहा है, अरे भाई तू भी साथ इसके सो रहा है, समझे? सोए हुए को सोया हुआ कैसे जगा सकता है? इस वक्त आपका काग हुसन का वाक्या, ये कैसे उन्होंने काग की यूनिफाई है, तो बहुत सारा सिरसा लंबा सा दिया हुआ, पर थोड़ा सा आपके सामने रखा जाएगा इस बात को बतलाने के लिए हमारे वेद शास्त्र ग्रंथ को ठीक क्या कहते हैं। मनोजीवन पाकर जिसको अनुभवी पुरुष मिल गया, उसका मनोजीवन सफल हो गया। वो पहले जो हमारा बड़ा डार्क हो रहा है, जिसके मुतालिक हम कुछ नहीं जानते सिवाय इस बात के ग्रंथों पोथियों में जो लिखा है उसका उच्चारण कर दे, हमारे एक्सपीरियंस है उसमें से कोई बात नहीं आई, तो ऐसे पुरुषों की सोबत में हम उस गति को पा सकते हैं जिसको उन्होंने पाया। संत और पारस में बड़े वंशो जान वो लोहा कंचन कराए, वो कर लाए आप समान। वो लोहे को पारस सोना बनाता है, पारस नहीं बनाता, संत तुमको संत बना देता। इस वक्त आप काग वसिंधी का जो उन्होंने गुरु के पास गए इसी चीज को हल करने के लिए, और फिर उसकी गति को ना जानकर कुछ निरादर सा किया, उसका रिजल्ट जो हुआ उसका मुझे करता है। गौर से सुनिए, काग वसुल जिक्र करते हैं अपने जीवन का। पहले थोड़ा सा वो ये है कि वो कहते हैं कि हमें बहुत सारी गरीबी आ गई थी, गरीब दुखी होकर कहते हम उज्जैन शहर में गए, वहाँ कैद का जमाना था, उसके गुजर जाने पर कुछ रुपया मिला गुजारे के मात्र, कहते फिर मैंने शिव भगवान की पूजा करनी शुरू हुई की। कहते वहाँ पर जब मंदिर में जाया करता था तो वहाँ एक ब्राह्मण था जो शिव की पूजा किया करता था। ब्राह्मण आज और पुराने जमाने में बड़ा भारी फर्क, आगे जमाने में कुछ पैदाइशी लिहाज से ये समाज नहीं चलती थी, हर एक इंसान जिस गति को पाता था उसके मुताबिक वो कहलाया जाता था। ब्राह्मण वही था, ब्राह्मण तो जो ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण हो, जो ब्रह्म को बिंद ले, ब्रह्म का अनुभव करके पार में बिंद कर पार हो जाए, उसका नाम ब्राह्मण था। पढ़ने लिखने वाले का नाम भी ब्राह्मण नहीं था, वो वेद शास्त्रों के जो माहिए थे उसको जानने वाला था, और तरक्की करके ब्रह्म से पार पार ब्रह्म में जाने वाला था। ऐसे पुरुष का नाम था ब्राह्मण। आजकल तो है ना ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, नहीं ऐसा नहीं था। वाल्मीकि डाकू थे, महर्षि वाल्मीकि बन गए। इस बात की तमीज उस जमाने में नहीं थी, तो वो ब्राह्मण वहाँ भगवान की, शिव भगवान की पूजा किया करता था, तो वो बड़ा साधु था, परमार्थ के जानने वाला था और महादेव की पूजा करने वाला था। ये ताकतें भी परमात्मा ने बनाई हैं खास खास काम करने के लिए। उसी के तीन धार की सूरते हैं, कहो जो जिस शक्ल से भी उसका आराधना करता है उसको कुछ न कुछ फल मिलता है। और कहते मैं उसके पास गया, साधारण तरीके से गुरु धारण कर लिया, मैं उसके खिदमत तो करना था मगर कपट के साथ करता था, ऊपर ऊपर से करता। याद रखो हम लोगों को गुरु मिल भी जाए तो दिल से नहीं उसको सच में तस्लीम करते, दिखावे की मात्र कर लेते हैं। कैसे कपट से उसकी पूजा किया करता था, मगर वो ब्राह्मण बड़ा नीति के जानने वाला था और बड़ा दयालु पुरुष। ब्राह्मण ने तो दयालु होना ही है जो ब्रह्म को बिन कर पार हो जाए। परमात्मा प्रेम है, कंपैशन है, दया का स्वरूप है, दया का पुण्य है। जो उसको पा गए उसके अंतर भी अवश्य वो दया का पुण्य होता। लव ब्यूटीफाइज एवरीथिंग। उसके पास को जाकर उसके निरादर भी करे तो भी वो प्यार से धोता। बच्चा अगर हमारी दाढ़ी में हाथ डाल दे तो हम उसको बुरा समझते। प्यार और दया होने के शौक से बच्चे को उस नाराजगी पर भी कुछ नहीं कहते, प्यार से और समझाने का यत्न करते हैं। तो इसी तरह कहने लगे कि वो मैं उसकी पूजा सेवा किया करता था मगर कपट से, ऊपर ऊपर गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को मन भीतर नहीं लाता। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं गुरु को ऊपर ऊपर से हम गाते हैं, दिल के अंदर जो वो कहता है उसको धारण नहीं करते, इसलिए हमको अनुभवी पुरुष के मिलने का पूर्ण फायदा नहीं होता। तो इसलिए कहते एक दिन उन्होंने मुझे बुलाकर बड़े नर्म दिल होकर बड़े प्यार से समझाने लगे कि देख भाई तू मनुष्य उन भागों से मिला है, तू कुछ किया कर। तो वो क्या करना क्या है, वो कहते कहा कि तू भी उपदेश दे दिया और कहा कि इस तरह से तू भी उस मालिक की पूजा कर। कहते वो मैं कहते मेरी जात तो बहुत नीची जात का था, बड़ा पाप रखने वाला था, कमीना काम से था, अज्ञान में ऐसा चूर था कि ब्राह्मण के जो कुछ हरि भक्तों के देख कर बजाय इसके कि मैं उनकी तारीफ को दिल में ये जला करता था कि इनकी इतनी महिमा क्यों होती, उल्टा उसे दुश्मनी करने लगा। गुरु रोज प्यार से समझाया करता था मगर मेरे तर्ज अमल को देख कर दुखी होता था, मुझे ज्यादा गुस्सा में आता था क्योंकि पाखंडी को नीति अच्छी नहीं लगती है। कुदरती बात, जो पाखंडी हो उसको नीति का सवाल ही नहीं रहता। तो आगे फिर वो आप जिक्र करेंगे कि मेरा गुरु से क्या तल्लुक हुआ, मैंने क्या किया और कैसे मैंने इस गति को पाया। ये उसकी पहली हिस्ट्री है थोड़ी सी, हम भी इससे क्या सबक सीख सकते हैं। अरे भाई अगर हम कपट से गुरु की सेवा करते हैं ऊपर ऊपर से दिखावे से तो क्या लेंगे हम। गुरु और शिष्य में दिल दिल का राह बनता, रिसेप्टिविटी बनती है, समझे। गुरु गौर अंदर समाए, सिख ऐसा हो जो गुरु के अंतर समा जाए, गुरु उसमें बोले, गुरु मुख बने, मौत पीछा गुरु बने, गुरु गॉड मैन है, गॉड प्लस मैन, और ये गुरु मैन बन जाए। तो गुरु मैन बन गए तो परमात्मा उसके अंतर आ गया कि नहीं, ये भक्ति का राज है। आई इट इज आई, सेंट पॉल कहता है इट इज आई नॉट नाउ आई, ये मैं हूँ कहते ये मैं नहीं, इट इज नॉट नाउ आई बट इट इज क्राइस्ट दैट लिव्स इन मी, ये क्राइस्ट मुझे बोल रहा है। यही आप साहब ने कहा चुना पोषण खुदाए सीना दोस्त ये ख्याल खेस गुम शुदा जमीन, ये अपने आप में से मेरे अपने उस प्रीतम से इतनी मेरे सीने की वो सफला भर गई, या मुझे ये ख्याल ही मैं हूँ या वो है, अपना आप ही भूल गया। इसका नाम है गुरु भक्ति। हर सच्चा गुरु भक्ति पाइये है जे मन वसावने, अगर गुरु मिल जाए। अगर का सवाल इसलिए पेश किया जा रहा है कि गुरु तो बहुत है, गुरु कहीं से मिलता, समझे। जो सचमुच में ये समर्था रखता है जिसका आगे आपको जिक्र आ चुका है, वो बाहर से तन में आने खल्क वह जान निर्दय खुदा मुदे, जहाँ तन तो उसका लोगों के दरमियान है और उसकी आत्मा प्रभु के साथ जुड़ी पड़ी है, मौत की सौगात बनी है। तन गिरफ्तार है जमीन और रूह पर हफ्ता आसमान, तन तो जमीन पर चलता फिरता नजर आता है, खाता पीता भी नजर आता है, मगर उसकी रूह आसमानों की सफर करती। सोच तो शायद आसमान की लख पावे कोई संत, तुलसी साहब समाते हैं आसमानों की रूह हमारी सफर कर सकती है किसी किसी शब्द की। तुलसी जग जाने नहीं अति युतम अपियापन है। तुलसी दुनिया के लोग इस राज से ना वाकफ है कैसे रूप इनको छोड़कर ऊपर आसमानों की सफर कर सकती है, कैसे जड़ो चेतन को अलहदा करके आत्मा ऊपर जा सकती है। कई राज से लोग बेखबर है तो इस राज को वो जानने वाली जो हस्ती है हमारी तरह इजारा इंसान नजर आता है मगर अंतर में वो कुछ और भी है। वली अलारा बर क्या से खुद मगीर, वली अला को अपनी क्यास और जाहरी शक्ल पर मत लो कि दर्द वस्तन यकता है शेर और शीर। शेर और शीर दोनों ही लफ्ज एक ही तरह से लिखे जाते हैं। एक शेर फाड़ कर खा जाने वाला जानवर है और एक आधार देने वाला दूध। इंसान इंसान सब एक है, उनके अंतर हमारे अंतर और उनके अंतर एक ही जैसे हक परमात्मा ने रखे हैं मगर उन्होंने उस दबी चीज को मनीजों के घाट से ऊपर आकर निकाल लिया है, हमने अभी नहीं निकाला। सबो कट मेरे साइया सुनी सही न कहो, बलिहारी किस घट के जहाँ कट प्रगट हो। के सब ये अंतर वो परमात्मा बस रहा है कैसे वो हृदय मुबारक है बलिहार जाने के काबल है जिसमें वो प्रगट हो गया। तो ऐसे प्रगट हुए हृदयों की महिमा के मुतलक इसमें जिक्र आएगा, गौर से सुनिए वो क्या फरमाते।
एक बार गुरु लीन बुलाई, मोहे नीति बहु भांति सिखाई।
कहते एक मर्तबा गुरु ने मुझे बुलाकर बहुत सी नीति की बातें सिखलाई, समझाने लगे। आखिर गुरु का काम है समझाना, सिख समझे न समझे बार बार समझाना होता है। बच्चा अगर बहुत बिगड़ भी जाए तो भी पिता फिर प्यार से समझाता, समझता मेरा बच्चा, वो समझता मेरी शरण में आया है, मैंने इसको बनाना है। इसी तरह से प्यार से कई तरीकों से उसको खींचता। तो कहते मुझे कई तरह से समझाया, एक बच्चा जीवन का आदर्श ये है, हमने दुनिया में इस तरह से रहना है, ऐसा जीवन बसर करो कि यहाँ भी सुख और आगे भी सुख, दोनों लोकों में तुम्हारी महिमा रहे।
एक बार गुरुलीन बुलाई, मोहे नीति बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भक्ति राम पद होई।
ऐ बेटे कि शिव भगवान की सेवा का फल यही है कि राम जी के चरणों में अटल भक्ति पैदा हो। राम राम का लफ्ज तुलसी साहब ने कई तरह से बताया, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम कटकट में बैठा, एक राम का सगल अकारा, एक राम सब ऊँचे न्यारा। एक राम वो थे जो राजा दशरथ के बेटे थे, 14 कल संपूर्ण अवतार थे, दुनिया के दुख हरण करने को आए। एक राम जो घटघट में बैठे हैं, एक त्रिलोकी नाथ तीनों लोगों को जो नथ रही ताकत है, एक राम जो इन सब का जीवन आधार है, वो राम है। तो राम के किसी के पास ही जाओ, ये खुद ही बयान करते हैं आगे जाकर कि लोगों से मैंने कहा कि राम वो है जो सब में रम रहा है। कहते मेरी ठीक है, ये रम तो रहा है, मुझे तो चाहिए वो शक्ल प्रगट होकर आए। माना कि तू दिल के खलवत कला में है मकी, हम मानते हैं कि तू हमारे घटर में है प्रभु रम रहा है, मगर जरा सामने आकर तू बैठ जा के नजर को हुए मजाज है, बस ये चाहता है भगवान को प्रगट देख। तो कहते हैं मुझे वो भगवान जो रम रहा है वो तो ठीक, कहीं पर वो प्रगट है तो उसके दर्शन कराओ। यही भगवान कृष्ण जी जब एक बार गोपी से दूर चले गए, कुछ मुद्दत वहां रहे, गोपियां बड़ी बिरा और शोर में जल रही थी, तो उदो को भेजा कि जाओ इनको थोड़ी ज्ञान ध्यान की बातें सुनाओ। उदो गए, बड़ी ज्ञान की बातें की, देखो कृष्ण के लफ्ज़ मैंने गिरी से निकलता जो आत्मा से नजदीक है कौन परमात्मा तो वो तो तुम्हारे अंतर में है। अरे तुम क्यों शोर गुदार में हो, वो भगवान कहाँ नहीं है। खैर बातें बहुत सुनाई वो सुनती नहीं, आखिर पूछने लगी क्या भगवान नारायण जो कुछ तुम कहते हो वो बातें तो ठीक है मगर तू ये बता सब बातें साची है नारायण ये बता कि जो उस मुरली मनोहर को किसी जिसे मैं इजहार करती हूँ देखना चाहते हैं उसके लिए तुम्हारे पास क्या आएगा। ज्ञान चान सब ठीक है वो सब के जब तक वो आंख न बने वो नजर न आए, इसलिए ये भगत का दिली जज्बा उसको एक मेटीरियलाइज कर लेता है कहीं ये सुनने आकर जाकर ये अपना हर अभियान किया तो कहते हैं उसको मेरा गुरु मुझे समझाने लगा तो क्या कहा कि देख भाई कि भगवान का फल यही है कि हमारे चित्त उस राम के चरणों में लग जाए। उस राम रमणी ताकत के दो इजहार की सूरतें होती हैं, एक जो दुनिया के अधर्म को दूर करने के लिए धर्म को स्थित करने के लिए अधर्मियों को दंड देने के लिए धर्मियों को उभारने के लिए दुनिया को स्थित करने के लिए ये एक पहलू उसका इजहार का है इसको नेगेटिव कहते हैं। दूसरा पहलू इजहार का यह है कि वो उसमें मिलकर आत्मा को जो मनिंदों के घाट पर घिरी पड़ी है इससे आजाद करके प्रभु से जोड़ना ये उसी राम ताकत के दो इजहार की सूरत है। तो किसी भी इजहार में कहते हैं उसके दर्शन होने चाहिए तो कहते हैं उन्हें भाई राम से मिलने के लिए ये सब कुछ ये जो पूजा है पूजा एक जरिया है ना उस रमे राम के साथ जुड़ने के लिए। जितने देखिए दो किस्म की विद्याएं हैं एक अपरा विद्या है दूसरी परा विद्या। अपरा विद्या में ग्रंथों पोथियों का पढ़ना समझे रसम रवाज तीर्थ यात्रा हवन दान ये वो सब शामिल ये पहला कदम पढ़ने से रुचि बनेगी शौक बनेगा। अब हम काग वसूल का वाक्य पढ़ रहे हैं दिल में आ रहे भाई क्या हुआ कैसे हुआ तो ये रुचि बनेगी और पूजा पाठ वगैरह करने से हवन दान ये वो रसम रवाज की अदा करने से भाव भक्ति बनती ये जरिया है एक प्रेपरेशन ऑफ दी ग्राउंड है हायर पर्पज के लिए। तो कहते हैं ये है जरिया उस राम के मिलने का समझे ये शिव पूजा जो है ये भगवान की जी मैं कर रहा हूँ तुम भी करो तुम्हें भी आकर राम मिल जाए जी।
राम है भजे तात शिव धाता नर पावर कह के तक बाता।
क्या प्यारे जितने ये शिव और ब्रह्मा वगैरह हैं जिन्हें ताकते ये भी उसी राम जी की पूजा कर रहे हैं। इंसान जब जिनको हम भगवान कहते हैं शिव भगवान ब्रह्मा जी विष्णु भगवान कहते हैं वो भी उसी की पूजा कर रहे हैं उसकी इजहार की सूरते हैं उसी के आधार पर चल रहे हैं। तो कहते हैं इंसान बेचारे का क्या जब वो करते हैं ताकते उसी की पूजा करें तो हमें भी उन्हीं की करनी चाहिए ये जीव बेचारा क्या है जो उसकी बड़े पाल ये कहो जो स्विच बन गए उसकी पावर के इजहार के जब वो उसी का आधार ले रहे हैं तो हमें भी उसी से जुड़ना चाहिए। तो इसलिए ये पूजा का जो जरिया है ए मीन्स टू दी एंड है ए बेटे ए बच्चे तू उसकी पूजा कर अल्टीमेट गोल क्या है प्रभु का पाना उस हमें ताकत से मिलना हमारी आत्मा उसमें रम जाए। ये कब हो सकता है ये मनुष्य जीवन में ही हो सकता है। कई प्राप्त मानुख दे हुआ गोविंद मिलन की तेरी बढ़िया प्रभु के पाने का ये वक्त है मनुष्य जीवन ही अवर का तेरे किसी न काम मिल साध संगत पंचे वाला भाई और जिन्हें तू काम कर रहा है इस प्रभु के पाने में मददगार नहीं। इस प्रभु के पाने में मददगार केवल दो चीजें हैं एक उनकी सोबत जिन्होंने पाया है साधु संग और वो परिपूर्ण परमात्मा जिसके साथ आत्मा जुड़कर हमेशा के लिए आना जाना खत्म हो जाता। तो कहते राम की पूजा कर भाई उसके पाने के लिए उसको ब्रह्मा जितने भी हैं भगवान ब्रह्मा जी हैं शिव भगवान हैं विष्णु भगवान सब उसी की पूजा कर रहे हैं। तो इंसान लोग को भी क्या गति है इनको भी उसी की पूजा करने के बगैर गति नहीं हुई जी।
जास चरण आज शिव अनुरागी द्रोह सुख चैत अभागी।
कहते हो जिसके चरणों के प्रेमी ये शिव और ब्रह्मा जी भी हैं, उस रामी के अजहार हैं, उन्हीं की पूजा उसी से ताकत ले रहे हैं। कहते हैं उसके साथ दुश्मनी करके फिर बदकिस्म इंसान ही सुख जाते, उसको न याद करना, उसके साथ ना जुड़ना, फिर दुनिया से कैसे सुखी हो सकते। नानक दुखिया सब संसार, ए नानक सारा जहां नहीं दुखी है, समझे कौन सुखी है? तो सुखी आज जिस नाम आधार, नाम किसको कहते हैं? वो परिपूर्ण परमात्मा जो रम रहा है, सब खंडों ब्रह्मों को आधार दे रहा है, उसका नाम है नाम। जिसकी आत्मा राम राम नाम से लग गई कहो, उसकी कल्याण, वो सुखी हो गया। उसको छोड़कर ये इंसान कैसे सुखी हो सकता? देखिए आज दुनिया में कहो दुख क्यों ज्यादा, हमने जिस्मानी तौर पर भी बड़ी तरक्की की है, सोशली पॉलिटिकली भी, बुद्धि के लिहाज से भी बड़े भारी तरक्की की है, जिसको देखकर अकल दंग रहती है। क्या चांद से भी गुजर सूर्य तक चक्कर लग रहा है आज, कुत्ते भी सवे घंटे में सारी दुनिया की जब चक्कर लगाए, कुत्तों ने भी टेलीविजन है, हजारों मीलों पर तुम देख रहे हो कौन बोलता है क्या बोल रहा है, रेडियो बन गए, हवाई जहाज बन गए, क्या कुछ बन गए, क्या हम सुखी हैं? नहीं, सारा जहां नहीं फिर भी दुखी है, उसका कारण क्या है? किसने अपनी आत्मा को उस में जाना है, भूल में जा रहा है, मन इंद्रियों के घाट पर अंतर से सो रहा है बाहर फैलाव के कारण, और अपने आप के ना जानने के सबब से प्रभु का अनुभव नहीं पा रहा है, इसलिए सब सुखी। ये तुलसी साहब ने कहा कि दुनिया में सारा जहां नहीं दुखी है, कोई तन करके, कोई धन करके, कोई मन करके, एक ना एक दुख समन को सुखी संत का दास, जो संत का दास बन, संत किसका नाम है? जिसके अंतर मालिक प्रगट हो गया, दूसरों को प्रगट करा सकता, थोड़े दफे उनके पास क्या है, तुरंत मिलावे राम से उन्हें मिले जो को, उनके पास ये पोर्टफोलियो जो भी आए उसके साथ जोड़ दो, इन्हों के घाट से ऊपर ला दो। तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? प्रभु भक्ति, वो परमात्मा जो रम रहा, उसके पाने के लिए जिन्होंने पाया उनकी शोभा। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि देख भाई, तू सिर्फ वो लोग बदकिस्मत हैं जो प्रभु को छोड़कर उसके ना जुड़ने से फिर सुख की आशा कर रहे हैं। कैसे सुखी हो सकती जी?
हर कहो हरि सेवक गुर कहे सुनि खगनाथ हृदय मम कहे।
ये गुरु ने शिव जी को विष्णु का सेवक बताया, ऐ गरुड़ सुन, मेरा तो ये बात सुनकर दिल जल गया। गुरु को गुरु ने यह बतलाया, शिव भगवान भी विष्णु भगवान ये सब ताकतों से एक राम के आधार पर चल रही है। बात असल तो यह है, कल ये बात उसने बताया, मेरा इससे तसल्ली नहीं हुई। आगे
अधम जाति में भी क्या पाए भय यथा अही दूध पियाए।
जैसे मैं नीची जात का हूँ, नीची जात है जो इन्हों के भोगों रसों फंसा है, वो सब नीची जात में। कहते मैं विद्या पा गया, बड़ा विद्यावान बन गया, विद्या पाकर मेरी क्या गति होगी कि जैसे सांप को दूध पिलाया गया और जहर बढ़ती। आलिम होना कोई ये जरूरी निशानी नहीं कि वो अनुभवी पुरुष है, इल्मियत कुछ और चीज है, अनुभव कुछ और चीज है। इल्म क्या चीज? हमारी सोच जब दिमाग की सेंटर से जुड़ती है ब्रेन के, उसका नतीजा इल्म है। जब हमारी सोच या आत्मा परिपूर्ण परमात्मा से जुड़ती है, उसका नाम अनुभव है, परमात्मा का पास। बड़ा भारी फर्क। आमिल के गले में इल्म फूलों का हार है, अगर वो आमिल पुरुष है, अनुभवी पुरुष है, तो एक चीज को कई तरीकों से आपके सामने पेश करेगा। अगर वो अनुभवी नहीं है, उसकी आत्मा प्रभु से जुड़कर उसका माउथ पीस नहीं बनी है, तो ऐसे पुरुष के सिर पर इल्म कैसा है, यही विशाल। जैसे शाम को दूध पिलाया जा, बहुत जहर बढ़ती, जैसे मेरी गति ये हो रही थी। अपना हाल बयान कर रहे हैं कि मैं ऐसी गति को इकरार कर रहे हैं। जब गुरु मिलता है ना, पहले तो आदमी अकल अकल कर चलता हो, हम बहुत जानते ग्रंथों को, तुम कौन हो। पीछे जब अनुभव नहीं मिलता तो आकर आकर चरणों में सिर लीन करना पड़ता है, तो कहते हो ओ मैं भूल में, तो कहते हैं का वो सुन अपनी कहानी बयान कर रहे हैं कि मैं नीच कर्मों वाला था, बन गया आलिम वाजल, ये ऐसा हो गया कि इल्म ही मुझे और जहर बढ़ाने का कारण बन रहा। जी
मानी कुटिल कुभाग्य कुजाती गुरु कर द्रोह दिन राती।
कहते मैं मगरूर था, मकार था, बदनसीब था और नीचे काम वालों में से था। गुरु के साथ रात दिन मुखालफत करने लगा, जाओ मैं आलिम गुरु क्या जानता। ऐसा होता है आजकल भी होता है, गुरु से मिल गए आलम फाजिल नवाब, मैं भी जानता हूँ क्या फलानी जगह ये लिखा है फलानी जगह लिखा। अरे भाई जो चीज उसको मिली है वो तो नहीं मिली ना, उसको क्या मिला। वो तुम्हारी आत्मा किन्नियों के घाट से ऊपर लाकर अंतर की आंख खोल सकता, तुम केवल इल्मी दे सकते हो। बुक इज नॉलेज ऑल विल्डरनेस, एक जंगल है जिसमें इंसान भटकता फिरता, हकीकत मिलती नहीं। मैं मगरब में गया, वहां के लोगों ने ये कहा कि भाई आपने जो बयान किया परमार्थ बड़ा सिंपल बड़ा सादा रास्ता है, आत्मा को आधार कर बिठाया और अंतर में जुड़ गए। अरे भाई ये मुश्किल क्यों बन गया। मैंने कहा जो लर्निड आदमी थे पढ़े लिखे, दे हैड नो फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ द इनसाइड एंड दे वर बीटिंग अबाउट द बुश, क्योंकि एक चीज कुछ पता नहीं वहां हाथ कब लगाया ना, या ये है या वो है या वो है या वो है, उनकी तफसीलें उनसे असल से मुश्किल बन गई थी समझने के लिए। तो आज मेरी पूछ तो आपको बातें नहीं कर बिठा कर ऊपर वे आप कर देता, तुम देखने वाले हाँ भाई है आलम सौ बात करे। आलम क्या करते हैं, मैंने एक किताब पढ़ी उसका नाम गुरु निर्णय है, बड़े आलम फाजल ने लिखी है, बड़े हड वो क्या लिखते हैं कि जहां भी अंतर में ज्योति का जिक्र आता है या किसी धुनी का जिक्र आता है, ज्योति मोती अंतर कोई नहीं, सिर्फ खुशी के इजहार के लिए हम कहते हैं भाई बाजे बज पड़े चिराग जल पड़े, अंतर कुछ नहीं। अरे भाई जो आमिल है वो हंसेगा था कि नहीं, वो आमिल जब बैठता बच्चा बैठता वो भी रोशनी के देखने वाला, परमात्मा ज्योति स्वरूप है कि नहीं, गॉड इज लाइट खुदा नूर, वो उसको दिखा सकता है, यही बढ़ाई है उसमें। तो कहते मैं अपने इल्म के घमंड में जैसे शाम को दूध पिलाया जाता है तो और उसकी जहर बढ़ती है, मुझे गुरु के साथ उल्टी मुखालफत करने लग गया।
अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा,
मेरे गुरु बड़े रहम दिल थे, अति दयाल थे भी, थोड़ा भी इस बात पर भी गुस्सा नहीं किया। कोई बात नहीं, आज समझेगा नहीं कल समझेगा, कल नहीं परसों समझेगा, तो फिर समझाते रहे प्यार से। हाँ जी
पुण्य पुण्य मोहे सिखाव सुबोधा,
बार बार मुझे समझाते देख बच्चा बात किया, बड़े ठंडे दिल से। असल बात यह है एक बच्चा है, तुम हो बीए पास, अब बच्चे से ये उम्मीद करो कि बीए पास की बातें करे, कैसे हो सकते। तो उस्ताद को गुस्सा नहीं करना चाहिए, उस्ताद को समझाना चाहिए उस बच्चे का क्या कसूर। मैं आपको आज अर्ज करूं 1903 की बात है कि मैं तीसरी जमात में पढ़ा करता था, एक आदमी आया लेक्चर देने लग गया। बात में मेरी समझ यही थी कि किताबों ही से पढ़ा जा सकता, मैं बड़ी हैरानी से, अब भी बड़ा विविध ख्याल है कि अरे भाई कहां से बोल, अब मैं समझते ये बड़ी मामूली बात है। भाई एक बच्चा जो इंद्रियों के घाट पर बैठा उसको को अंतर में रोशनियां हैं, रोशनी कहां कैसे होते, मर तो नहीं जाएंगे। आप हजरत मोहम्मद साहब को सवाल किया कि महाराज आप कहते हो जीते जी मरना चाहिए, कहीं मर तो नहीं जाएंगे, कब्रिस्तान में तो नहीं पहुंच जाएंगे। कई भाई इससे भी डर करते, इनसे जब रूह पर जाए माओ वो छोड़ ही देते। तो हजरत मोहम्मद साहब ने कहा इन मर गए आंख के दर गोरे रवि, ये मौत वो नहीं कि तुमको कब्रिस्तान में पहुंचा दे, बल्कि ई जो जुल्मत अंधेरे से नूर की तरफ ले जाने वाले, अंतर नूर पर गए, जब तक रूह से ऊपर ना आए उसको कैसे पा सकता, वो अदृष्ट अगोचर है। जब तक एवड ऊंचा होवे को उतनी स्थिति को जाने सो, जब तक उसी लेवल पर तुम नहीं आते हो उसको कैसे पा सकते हो। तो सेल्फ एनालिसिस का मजमून है, आलम लोग इसको समझ नहीं सकते, वो ग्राह मर जाएंगे बस। तो कह रहे मैं इससे मुखालफत करने लगा, मैं वो दयाल पुरुष थे, मैंने तो बहुत गुस्सा अपनी तरफ से ये वो किया, मगर वो गुस्से में लिया, फिर तैयार से समझाया, देख बच्चा असल बात रखो, एक आदमी जब भी किसी महात्मा के पास जाओ तो एक चीज याद रखो कि जो कुछ तुम जानते हो वो तो जानते हो, वो तो तुम्हारा कम बेश नहीं होगा, जाओ वो क्या कहता है उसको समझने का यत्न करो। हम लोग क्या करते हैं, अवल तो जाते ही नहीं। पहली चीज निम्रता है, याद रखो जब तक निम्रता न धारण करे इंसान तो किसी के पास नहीं जाता, वो मैं आलम, मैं फाजल, मैं हाकिम, मैं अमीर, मैं बादशाह, मैं क्यों जाऊं, इसी जो मैं रह जाता है। अनुभवी पुरुष आते हैं, एवरेज तबका के लोग फायदा उठा जाते हैं, वो खाली रह जाते हैं। अगर चले भी गए तो वहां अपने जोन में बैठे हो, ये फलानी जगह लिखा हम भी जानते हैं, ये क्या जानता, मैं ज्यादा बता सकता हूँ। जो प्याला सराय के नीचे रहेगा वो ही बढ़ जाएगा, जो सराय के ऊपर रहेगा प्याला वो कैसे बढ़ेगा, आकर भी खाली चले जाता। तो अनुभवी पुरुष के पास जाकर अपने इल्म का जोर नहीं करना चाहिए, समझने का यत्न करो, जो नेक नियति से सवाल हो बेशक करो। भगवान कृष्ण जी ने गीता के चौथे अध्याय में इस बात को बड़ा निर्णय किया है कि अगर तुमको ज्ञान पाने की ख्वाहिश है, जाओ ऐसे महात्मा के पास जो अंतर में परमात्मा के दर्शन करते हैं। फिर आगे कहते हैं, नेक नियति से सवाल करके हर एक सवाल का जवाब कर दो, लो जिंदाबाद की खातर नहीं, डिस्कशन सेक की खातर नहीं, जब बात समझ में आ जाए, भरोसा बनेगा, भरोसा बनेगा तो फिर जो वो कहे करो, तुम भी उस गति को पा जाओ। तो कहते हैं, मैं आलम बन गया, मैं जो के भोग रस में हंकारी था, मक्कार था, सारे आए मुंज में थे, मैं उसे कहो मैं जानता हूँ गुरु क्या।
यही ते नीच बढ़ाई पावा, तो प्रथम ही किसीन सा।
जिसकी लाल से मिलने से लो पुरुष, कमीने से कमीना पुरुष भी उस हायर गति को पा जाता है, वो पहले इसी की जो है गति को दूर कर समझाना चाहता। अरे भाई बात क्या, जब तक बात समझ ना, उसका भी क्या कसूर कि दिल दिमाग रंगा पड़ा है बाहरी इल्मों से, जब तक ये नफी ना करे, हाँ उससे मिसालें तो ले समझने के लिए, मत जब तक वो एक्सपीरियंस ना मिले तब तक काम नहीं बनता। जब ये चीज मिल जाती है सब ग्रंथ पोथी खुल जाओ, को सारे महात्मा यही कह रहे हैं, जब तक वो फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं मिलता ये उसी भूल में रहता। देख
धूमयान संभाव सुनो भाई, बुझा धन पदवी पाई।
अब कहते हैं ऐ भाई सुनो, गुरु ने कहा भाई सुनो, धुआं आग ही से पैदा होता, वो बादल बनकर उसी को बुझाने का कारण बन जाता। ये जो वो पुरुष हैं जो गुरु से मुखालफत करते हैं ना, अनुभवी पुरुषों से, उनकी वही बादल बनकर उनको फिर समझाते हैं, उनके दिल में फिर दया मेरा है बच्चा समझा नहीं, फिर समझाओ, फिर समझाओ, फिर समझाओ, आखिर कुछ समय आता है जी समझ में आने लग जाती के बाद क्या। जी
राजमार्ग पारी निरादर रही, सब कर पद प्रहार नित सहई।
मिसाल देते हैं कि ऐसे पुरुषों की क्या गति है, जैसे धूल होती है, धूल राम जलील होकर पड़ी रहती है, सबके पाँव की लाते सहती समझे, पाँव के नीचे दबी जाती है मिट्टी बिल्कुल, मगर क्या असर होता है उसका आगे।
मरुत उड़ा प्रथम से ही भर नृप नयन कीर्तन पर,
जब हवा से उसको उड़ाती है तो क्या, तो पहले हवा में भर जाती है, फिर बादशाहों के ताजे और सिरों पर पहुंचती है। अगर खास निमत्ता धारण कर ले तो बादशाहों के ताजों पर निवास करती है, निमत्ता बड़ी भारी चीज है। सेंट अगस्टिन से पूछा कि परमात्मा कैसे मिलता है, कैसे निम्नता धारण करो, फर्स्ट ह्यूमिलिटी, सेकंड ह्यूमिलिटी एंड थर्ड ह्यूमिलिटी। निम्नता हो तभी किसी के पास जाए, निम्नता हो तभी किसी की बात सुने, निम्नता हो जब चीज मिल जाए फिर भी समझिए किसी की दात है। खजांची के पास 1,00,000 रूपये आ गया, उसका क्या अमानत है? तो संतों का सिंहार निम्रता, सच्चे मानो तो कहते वो लोगों के सिरों के ताज बनते निम्रता धारण करके। क्या किसी बादशाह के ताज पर तुम बैठ सकते हो? जाता दूर बैठ सकती है। मिसाल देकर समझाने का यत्न किया है कि अगर तुम इतने निवर बन जाओ जितनी के दुगल है तब भी इस गति को पा जाए। ये महापुरुष ने और कई तरीकों से कबीर साहब से पूछा कि राम भक्त को, प्रभु भक्त को कैसा होना चाहिए, कई मिसालें दी। पहले कहा रोड़ा हो रो बाट का, तज मन का अभिमान, के रस्ते के रोड़े बन जाओ, अभिमान को छोड़ दो। कहते रोड़ा हुआ तो क्या हुआ, पंची को दुख से रोड़ा भी दुख का कारण है। ये भी मिसाल अच्छी नहीं भाई। फिर कहते हैं जैसे धरनी में थे, ये दूध की मिसाल उन्होंने भी दी है। कहते खे हुआ तो भी क्या हुआ भाई, वो दूध लागे हम वो भी कपड़ों के साथ जाकर लगती। कहते फिर क्या हो? कहते पानी जैसा हो। कहते पानी भी कभी गर्म कभी सर्द, ये भी आदर्श ठीक नहीं। क्योंकि हरिजन को कैसा होना चाहिए? हरिजन हरी जैसा चाहिए। भक्ति अंतर भगवान ही ये प्रगट हो जाए, उसके गुण इसके अंतर आ जाए, ये है आदर्श। वैसे निम्रता के कारण अगर निम्रता बन जाए तो लोगों के सिरों के ताज। आज गुरु नानक साहब को सब नानक 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 हो रहे हैं। क्यों? निम्रता भाव से। कहाँ नहीं गए? सब तीर्थों पर गए, मक्के मदीने भी गए, फारस में भी गए, बंगाल में भी गए, बर्मा तक गए, संगलादीप तक गए, चीन तक गए, पहाड़ों पर योगियों से मिले, निम्रता तीर्थों मिले ना। ये अलग बात ही, मिलने पर उनको वो चीज जो हम भूल रहे थे उनको ताजा किया, तो निम्रता बड़ी भारी चीज है। निम्रता को धारण करो जी।
सुन खगपति अस समझ प्रसंगा, बुध नहीं कर रही अधम कर संगा।
कहते हैं गुरु गरुड़ सुनो, जो इस बात को समझ कर अकलमंद लोग जमीनों की सोबत से परहेज करते। पानी सब पानी है, मगर गंदे नाले के पानी को कोई नहीं पीता है। परमात्मा सब में है, मगर जिनमें ये बुराई है, इनों के भोग रस की मान बढ़ाई, ईर्ष्या द्वेष, ये वो बन रही है। अरे मैं वहाँ उनकी सोबत में वैसे ही रंग मिलेगा ना, जैसी सोबत वैसा रंग। तो अनुभवी पुरुष कहते हैं कि भाई ऐसे से परहेज करो। संगत का असर सबसे बड़ा बनता है, जैसी सोबत वैसा रंग। सोबते साले तुरे साले कुनद, सोबते ताले तुरे ताले कुनद। सोबत का असर बड़ा भारी होता, तो सोबत के असर के लिए महाभारत में जिक्र आया, जिस तरह फूलों की खुशबू सब साथ की चीजों को, खाए वो मिट्टी हो, पानी हो या कपड़े हो, सबको खुशबूदार कर देती है, इसी तरह नेक की सोबत उनकी सोबत करने वालों को अपना असर देती है। मूढ़ों की सोबत अविद्या का रंग देती है, संतों और महापुरुषों की सोबत सत और धर्म का असर देती है। इसलिए चाहिए कि संत महात्मा की संगत करें, ताकि उसकी शांति दायक असर को ग्रहण कर सके। ये महाभारत कह रहा तो सोबत संगत का रंग बनता। तो किसान बड़ी खूबसूरत है, हर एक पहलू थोड़ा थोड़ा टच करते जाते हैं, एक वाक्य बयान करते हैं उसके कई पहलू साथ ही साथ जिक्र करते जाते हैं। रामायण में एक बड़ी खूबसूरती यही है कि कई पहलुओं से टच करते चले जाते हैं साथ ही साथ, कि जो परमार्थ परमार्थ को पाना चाहता है उसको क्या क्या साथ साथ करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं सोबत और संगत का बड़ा भारी असर होता है। जब तक ये धारण न करे नेकों की सोबत, बनों से हटे नहीं। साकत का बोलिया जैसे बिछुआ डसा, साकत जो प्रभु से टूटा पड़ा है उसके मिलने से जैसे बिच्छू डंक मारता मामूली कांटा सा चुभता है, पीछे कड़वल पड़ते हैं, ऐसे ही जो बुरी सोबत फैलाव में जा रहे हैं, अपने आप का अनुभव नहीं कर रहे, ऐसे पुरुषों की सोबत देख जा तुम्हें उसी रंग में रंग देती। तो कहते हैं इसलिए अकलमंद लोग जो परमार्थ को पाना चाहते हैं, जन्म को बर्बाद नहीं करना चाहते, वो टूटे हुए की शोभ से परहेज करते हैं।
कवि को विद गाही अतनीति, फल सन कलना फल नहीं प्रीति।
जो पंडित लोग हैं, जो उस प्रभु के गुणवाद गाने वाले लोग हैं, कहो उसके राग के गाने वाले हैं, कहते वो ऐसी नीति गाते, यही नीति बतलाते कि बदों की शोभ से हटो, नेकों की शोभ से त्याग। ए मैन इज नोन बाय दी सोसाइटी की, एक इंसान को जानना हो तो उसकी सोसाइटी को देखो, कैसी सोसाइटी, कायदे की बात है। नेकों की नेक जो होगा नेकों की शोभ से त्याग करेगा, जो परमार्थी या परमार्थी पुरुषों की शोभ से त्याग करेगा। अरे जो मन इन्हें के घाट इन्हों के भोग रसों में लंपट है बेख्तियार, वो ऐसी पुरुषों की शोभ में अख्तियार कर जो उसमें रंगे जा रहे हैं। तो कहते हैं ये आदमियों से दूसरी रगबत रखना उनको अच्छी नहीं लगती, तो ऐसे पुरुषों से हमेशा ही प्यार और सलूक से काम करो। वो नीति यही बतलाते हैं कि नेकों की सोबत करो, उनसे प्यार करो, उनसे दुश्मनी न करो।
उदासीन नित रहिए गुसाई, खल परिहरिए स्वान की
न्याई। तो इसलिए कहते हैं भाई उनसे अलग थलग उदासीन होकर रहो, उनकी सोबत। स्वामी महाराज ने कहा ना, हट रहो खास और आम से, ऐसे पुरुषों से दूर रहो। किस तरह मिसाल देते हैं, जैसे बदलात आदमी को वो जात उनकी अच्छी नहीं जाती, इसमें बहुत सारी रंगी पड़ी है इंद्रों के भोगों रसों में, कि उनको इसी तरह छोड़ दे जैसे कुत्तों की शोभा तुम अख्तियार नहीं करते। कुत्ते बड़े जल्दी गिने जाते हैं ना, कहते जैसे कुत्तों की शोभा तुम नहीं पसंद करते, इसी तरह उनकी पसंद छोड़ दो। मिसाल दी कुत्तों में भी कई गुने पर एक पहलू रहा कि इंसान कहाँ और कुत्ता कहाँ, जलील समझते हैं। इसलिए ऐसे पुरुषों की सोबत से ऐसे ही परहेज करो जैसा तुम कुत्तों से करना चाहते हो।
मैं खला हृदय का पात कुटिलाईत कह नामो है सुहाई।
कहते मेरे अंदर गलाजत भरी पड़ी थी, मैं दुष्ट था, मकार था, बड़े लो ख्याल वाला बंदा था, उनकी ये समझाने वाली बात मुझे दिल से पता अच्छी न लगी। कायदे की बात, जो किसी जो रंगा पड़ा हो ना एक खास रंग में, उसको कोई और बात कहे अरे भाई क्या कहते हो जाओ हमें पसंद नहीं। कहते मेरी यही गति थी, गुरु बार बार प्यार से समझाते थे, मैं समझता नहीं।
एक बार हर मंदिर जपत रहो शिव नाम, गुण आयो अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम।
कहते एक मतवा में शिवालय में बैठा था, शिव जी का नाम जप रहा था, गुरु आए, मैंने उनको अहंकार के भाव क्या है, मैं बैठा रहा उठा था। तो कहते उसका क्या हुआ आखिर, यानी ये मुझे अंकार में आकर गुरु आचार्य ये क्या जानता, मैं अच्छी पूजा कर सकता हूँ।
तो दयाल नहीं कहो कछु, उर न रोष लवले अति अघ गुरु अपमानता सह न सके महेश।
कहते वो तो दयालु पुरुष थे, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, जरा भी गुस्सा उनके दिल में नहीं आया, लेकिन गुरु की बेइज्जती को देखकर शिव भगवान भी सहार न सके, जैसे बहुत उपद्रव किया।
मंदिर माज भाई नभ बारी रे हत भाग्य आज्ञ अभिमानी।
के मंदिर में बैठे हुए नब से बानी आई, क्या कहा कि ऐ बदनसीब अधर्मी और अभिमानी पुरुष, यह आवाज आई। तू बदनसीब है, तू अभिमानी पुरुष है, तू अधर्मी है, तुमको नीति का पता नहीं।
यद्य पिता व गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा।
इसमें शक नहीं कि देखा है बदनसीब इंसान, गो तेरे गुरु ने इस बात पर गुस्सा नहीं, वो समदर्शी है, समझे। वो कहते हैं ये बेचारा अनजान बच्चा है, उसको गुस्सा नहीं आया क्योंकि वो बड़ा दयालु है, समदर्शी है और मुकम्मल पूर्ण ज्ञान रखता है, इसलिए उसने तो गुस्सा नहीं किया। उसका कार्य वो सबके अंतर पापी और पुण्य दोनों के अंतर वही देखता, वो देखता है ये पापी जो है आत्मा में तो कोई फर्क नहीं, आत्मा जैसी मन इंद्रियों के घाट से रंगी गई वो देखते ये रंगा पड़ा भाई है आत्मा, हजारों हमारा है, इसलिए कहते हैं इसको साफ करना, उसको रह मारना। ये इससे सबक आज हम लोगों को सीखना चाहिए जी।
तदपी चाप शाठ दे हो तो नीति विरोध सुहाए नामो,
दोनों ने इस बात को बुरा नहीं माना मगर मैं तुमको शराब दिए बगैर नहीं रहूंगा। क्यों? इसलिए कि मैं नीति के बखिलाफ कोई हरकत मुझे पसंद नहीं, ये नीति। राम कृष्ण से को बड़ो तीन भी तो गुर की, तीन लोग के नायका गुर आ गया नहीं। राम भगवान राम और कृष्ण से कौन बड़ा होगा, त्रिलोकी नाथ हुए होते हुए भी गुरु के आगे नीति है। कबीर साहब रामानंद जी को गुरु धारण करते हैं नीति के धारण करने के, तो कहते इस नीति के उल्ट मैं कोई बात सुनने को तैयार नहीं, मैं जरूर तुमको श्राप दूंगा ताकि तुझे ये सबक रहे। और वैसे भी आप देखें सब महापुरुष यही कहते हैं, भाई रे गुरु बिन ज्ञान न होए, पूछो ब्रह्म नारद वेद व्यास को, ब्याज से जाकर पूछो, नारद से पूछो, गुरु के बगैर किसकी कल्याण नहीं, गुरु के बगैर गति नहीं, गुरु बिना गत नहीं, चाह बिना पथ नहीं, गुरु गुरु हो तो। आज इसमें शक नहीं कि गुरु और साधु के नाम से हम उतना फर्क है, उसका कारण क्या कि वो गुरु गुरु नहीं है, एक्टिंग पोजिंग कर रहे हैं, सांग बन रहे हैं, समझा। इस हकीकत को न खुद पाया है न दूसरों को दे सकते हैं, उनको क्या करते हैं बाहर मुखी साधना प्रा विद्या में लगा देते हैं, लगे रहो भाई, कोई मांगे महाराज बख्शीश करो, वो भाई हमने 50 साल में ली तुम्हें अभी दे दे, कुछ करो, दे सकते नहीं। इसलिए मन इंद्रियों के घाट पर बैठे हुए के होने के कारण वो जब देखते हैं ये भी हमारी तरह मन इंद्रियों के घाट पर बैठा जैसे हमें कहते हैं लाल गुरु जो हमें ऐसे साधु संतों की रूप में ब्लाइंड लीड्स द ब्लाइंड बोथ पास इनटू द डिच, अंधा अंधे को चला रहा है, दोनों ही गड़े में करेंगे और जाओ। तो कहते हैं कि मैं इस मर्यादा को तोड़ता नहीं, तुम्हें सजा दूंगा, शराब दूंगा। आगे और कुछ कहते हैं सुनिए गौर।
जो नहीं दंड करो खाल तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा।
अगर मैं तुझको सजा नहीं देता, श्राप नहीं देता, तो जो श्रुति मार्ग है वो भ्रष्ट हो जाएगा। श्रुति मार्ग किसको कहते हैं? श्रुति कहते सुना गया, स्मृति मार्ग नहीं, श्रुति मार्ग। वो श्रुति उदो गीत जो प्रणव की धुरी हो रही है वो मार्ग भ्रष्ट होता है, क्योंकि श्रुति सुनी नहीं जा सकती जब तक इंद्रियों के घाट पर बैठे। ऐसे अनुभवी पुरुष को अगर तुमने नाराजगी की है जो श्रुति के जानने वाला है, अरे भाई मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं तो लोग सारी भ्रष्ट हो जाते। दे
ये शठ गुर सन ईरखा कर रौरव नरक कोटि युग पार।
यदि जो मूर्ख लोग गुरु से हसद करते हैं वो 100 कलप तक रौरव जो नरक सबसे गया गुजरा है उसमें बास कर। वो बयान किया था उसका चेहरा छोटा है, बीच में गंदगी भरी है, उसके बीच में डाल दिया जाए, इशारे दिए प्राणों मित्र। तो कहते हैं मूर्ख आदमी अगर गुरु से अगर कुछ कर नहीं सकता तो ईर्ष्या द्वेष का तो कोई मतलब नहीं। देखो वो तो कुछ नहीं कहता मगर वो जो नीचे के जाने वो उसको सजा देता। तो काग वसंत को श्राप मिला, किसने दिया? गुरु ने नहीं दिया, गुरु तो दयाल पुरुष है भाई। वो पावर जिसमें वो रम रही है, दो किस्म की पावर मैंने अर्ज की, एक वो पावर जो अधर्मियों को दंड देती है, धर्मियों को उभारती है, जगत को स्थिति में कायम रखती है, वो एक पावर वो सजा देती है। जो दूसरी किस्म का इजहार रखते हैं उसको, वो संत जन होते हैं, वो तो प्रभु से जोड़ते हैं, पापी आए पुण्य पापी से कोई भी आचार भाई प्रभु से जोड़ते, तो वो तो दूसरों पर श्राप नहीं देते। याद रखो महात्मा कभी किसी को श्राप नहीं देते, समझे? वो हमेशा दया करते हैं, जितना पापी होकर जाओ उतना और दया करते। हमारे हजूर थे कई बार बड़ी निंदा करके आना, जब होश आनी कह महाराज दया करो हमने आपकी बड़ी निंदा की है, कह रहे मेरे तक नहीं कर नाम दे देते। तो ये संतों का और जो नीति में रखने वाली ताकत है उनका आपस में संवाद, वो सजा देती है, वो तो हमेशा ही दया करते हैं।
जग जो पुण्य धार ही शरीरा, जन्म भर पावही पीरा।
ऐसे पोष्पिंड वगैरह की दुनिया में जाते हैं और 10,000 जन्म तक दुख मिलता है। ये किसका बयान है? तुलसी साहब बयान कर रहे हैं, समझे? अनुभव पूछते यही और महात्माओं ने बयान किया। यहां तक भी कहा नर निंदक गुरु निंदक नारायण हो ही ताका मुख न देखो। कोई नारायण भी अगर गुरु की निंदा करे तो उसका मुंह न देखो। तो गुरु और आप देखेंगे दो पहलू बयान कर बड़े सूक्ष्म वृत्ति से, एक स्थिति में कायम करने वाली नेगेटिव पावर, एक पॉजिटिव पावर। पॉजिटिव पावर तो श्राप नहीं देती, वो माफी ही जानती। हाफिज साहब ने कहा आखिर ही अमर शब्द मालूम, कहते आखिर जाकर हमें ये मालूम हुआ कि सल्तनत दरवेश बहुत बेहिसाब, दरवेशों की सल्तनत बख्शिश, हिसाब लेना नहीं। जो हिसाब लेने वाली ताकत है वो उसको संयम में रखने के लिए इश्तराब दे रही। जी
बैठ रहे थी अजगर एव पापी, सर्प होए खल मल मती व्यापी।
कहते है पापी पुरुष जा तू इधर की तरह बैठा रहो, तू सांप होगा, तेरी अकल में पाप समा गया गुरु की नाराजगी की, ये शराब देती।
महाबिटप को डर महू जाई, रहो अधमाधम अधगति पाई।
कहते जा किसी दरख्त की खोखली जगह जो वहां बैठा रहो और इसी अधोगति में पड़ा बात, ये मैं तुझे श्राप दे जा। फिर इस पर
हाहाकार कीन गुर दारण सुनि शिव शाप, कंपित मोह विलोक अति और उपजा परिता।
कहते ये इस बद्दुआ को सुनकर गुरु का पुत्र, आखिर गुरु के दिल में शिष्य का प्यार है, मेरा बच्चा है कहीं चला न जाए, तो कहने लगे गुरु ने हाय हाय की। कहते मुझे कांपते हुआ देखकर बड़ा उसको रंज हुआ, तो क्या कहने लगे आगे फिर से आता उसने दुआ की कि हे कि तुम इसको श्राप ना, तो तुम बड़े ऐसे हो, बड़ी महिमा की। आखिर उन्होंने फिर उसकी काग बसंत की, उनको साथ लंबा सा प्रसंग है। तो मेरे अर्ज करने का यहाँ तक मतलब क्या, अगला ऐसा फिर कभी याद ही कर दिया जाए। इसके साथ आओ सात सवाल आते हैं काग वसुंड ने, गरज ने किए हैं काग वसुंड से। ये पीछे अकबर राम जी के इसको दर्शन हुए तो काग वसुंड ने जब इस गति को पाया, बुद्धरा जन्म दूसरा लिया, तो उसमें इस यूनि में था, मध्य में वो शौक था, यही शौक था कि राम સામે દક્ષિણ ને રામ લોક બહુ સમજાવ રમ રહા અરે ભાઈ રમ રહે છે ભક્ત કી તસલી નહીં હોતી વો યે ચાહતા કે વો સામને આકર બેઠે તો વો રામ કે દર્શનો કો પાયા આખિર ઓર ફિર ઉસકી ગતિ હુઈ તો ઇસ વખત એક ઓર જગહ થોડા સા પોર્શન હૈ વો આપકે સામને રખા જાતા હૈ કે ગરુડ ને સાત સવાલ કા ગુસુન સે કિયે કે આપ ઇન સાત સવાલો કા જવાબ દો ગૌર સે સુને બડે જરૂરી સવાલ હૈ આમ દિલ લોગોં કે દિલો મેં યહી સવાલ આતે હૈ ઓર ઉન સવાલો કા જવાબ કાગ વસુંધ જી ને ક્યા દિયા વો ગૌર સે સુનિયે સબ મહાત્મા યહી જવાબ દેતે હૈ મત રહા હું જો જો જિસ જિસ ગ્રંથ કા ભાવ રખતા હૈ ઉસી મેં સે કોઈ ચીજ પેશ કર દી જાય ઉસકી પૂરી તસલી હો જાતી વૈસે કહેને કો જે જવાબ સબ મહાત્માઓ ને દિયા ગૌર સે સુને વો સાત સવાલ ક્યા હૈ ઓર ઉનકા જવાબ ક્યા દિયા
थोड़ी सा प्रेम बोले ओ खगराऊ जो कृपाल मोयू पर भाऊ।
तो गरुड़ ने कहा कि तुम मुझसे बड़ा प्रेम करते हो ऐ काग सुनिए तो आप मुझ पर मेहरबान हो तुम मेरे दिल में कुछ शंकाएं हैं मैं वो आपसे पूछना चाहता हूँ आप दया करते હમેશા યાદ રખો ગુરુ કો શિષ્ય પર શિષ્ય કા જિતના પ્યાર ગુરુ કે દિલ મેં હૈ ઉતના શાયદ હજારો માતાઓ પિતાઓ મેં નહીં હોતા માતા પિતા ભી યે ખ્યાલ રખતે હૈ બડે હોકર હમે કમા કર દેગા અરે ગુરુ ક્યા ચાહતા હૈ કુછ ભી નહીં વો યહી ચાહતા હૈ કે ઇસકી આત્મા પ્રભુ સે જુડ જાય બસ યે ઉસકા મિશન હોતા તો વો કહેતે હૈ કે તુમ મુઝસે બડા પ્યાર કરતે હો ઇસી મેં आप मेहरबान हो इसलिए मैं अर्ज करता हूँ आप इनका जवाब दीजिए। हाँ जी
नाथ मोहे निज सेवक जानी सप्त प्रश्न मम कहो बखानी।
कहते मुझको अपना सेवक जानो मेरे दिल में सात सवाल है उनका आप दया करके जवाब दीजिए वो कौन कौन से सवाल है गौर से सुनिए। जी
प्रथम ही कहो नाथ माति धीरा सबसे दुर्लभ कवन शरीरा।
स्वामी तू बड़ी अकल वाले हो बड़े दानिशमंद हो तो ये आप बताएं कि शरीरों में से सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा पैदाइशें तो बड़ी है बड़े जूनियर है तो जूनियर में कौन सी जून की शरीर धारण करना जो है ये सबसे दुर्लभ है पहला सवाल।
बड़ दुख कवन कवन सुख भारी सो संक्षेप ही कहो विचारी।
कहते सबसे बड़ा दुख किस बात में है और सबसे बड़ा सुख किस बात में ये जरा खोल कर थोड़े से खुलासा करके मुझे समझाइए ताकि मुझे समझ आ जाए कि सबसे बड़ा दुख किस बात में और सबसे बड़ा सुख किस बात में। दुख तो हम नहीं चाहते ना सुख चाहते हैं तो बड़ा सुख किस बात में चाहे इसके भोगों रस में हम इसमें तो सुख मानते हैं इसका जवाब देंगे और सबसे बड़ा दुख किस बात में ये दूसरा सवाल है। हाँ जी
शांत शांत मारम तो मजानो इन कर सहज स्वभाव बखानो।
कहते आप संत और असंत के भेद को जानने वाले हो आप इनको सहज स्वभाव से बताओ कि उनका सहज स्वभाव क्या होता है संत का क्या होता है और असंत का क्या होता है इन दोनों के स्वभाव क्या होते हैं ये बताइए। तीसरा सवाल हुआ
कवन पुण्य श्रुति विदेश विशाला कहो कवन अघ परम कराला।
चौथा सवाल ये है कि वेद में कौन सा पुण्य सबसे बड़ा गिना गया श्रुति वेदों वेद श्रुति है ना श्रुति है श्रीमति और है श्रुति वो है जिनका तलब सुनने से और कौन सा पाप सबसे जबरदस्त ये चौथा जी
मान सरोग कहो समुझाई तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकारी।
कि इंसान को कौन कौन से रोग लग रहे हैं। आप तो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानने वाले हो, ये जरा खोल कर समझाओ कि हम लोगों को कौन से रोग लग रहे हैं, कैसे हम उनसे आजाद हो सकते हैं, रोगों से बच सकते हैं।
तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूं ये नीति।
सब सुन जी बोले क्या प्यारे, तुम प्रेम से सुनो बात को, जो मैं तुमको अभी सवालों का जवाब देना हूँ, जरा गौर से सुनिए, प्रेम से सुनो, सब तरह से ख्याल को हटा कर सुनो। मैं इख्तसार करके थोड़ा डाइजेस्ट संक्षेप करके आपके सामने इसका जवाब देता हूँ।
नर्तन सम नहीं कवन दे, चराचर जाचत ते ही।
कहते इंसान की जिससे ज्यादा कोई बढ़कर नहीं है, मनुष्य उन सबसे ऊंचा हाईएस्ट रंग इन क्रिएशन है मनुष्य। सर्व जून तेरी पनहारी, सर्व में तेरी सिंगदारी, सर्व जूनों में तू सरदार जूनी है, और सब से जूने तेरी सेवा के लिए बनाई गई। ये यहाँ तक व्यास कई प्राप्त मानो के हुआ मनुष्य बड़े भागों से मिलती है। इसको जिनने चराचर जीव है उसकी ख्वाहिश करते हैं मनुष्य पाने, यहाँ तक बयान किया है कि अगर जिस देही को सिमरे देव सो देही पाजर हर किसे, जिसको देवी और देवता भी जिस मनुष्य जीवन को पाना चाहते हैं, अरे भाई तुमको वो मनुष्य जीवन मिला है, अब उस प्रभु को पाने का वक्त है, उसको पा लो। मुक्ति को पाने के लिए मनुष्य जीवन सबसे ऊंचा गिना गया। फिर आगे और इसका बयान करते हैं, ये किस लिए है मनुष्य जीवन, किस लिए हमको मिला, उसकी गर्व बयान करते हैं, क्यों ऊंचा गिना गया। जी
नरक स्वाद अपवाद नितेनी, ज्ञान वैराग भक्ति शुभ देनी।
कहते नर्क और स्वर्ग और मोक्ष के पाने की ये सीढ़ी, नरकों में जाने के सामान कर लो, स्वर्गों में जाने के सामान कर लो, या मोक्ष के कर लो, ये मनुष्य जीवन में तुम तीनों काम कर सकते हो। पिछले प्रारंभ कर्मों के साथ मौजूदा जन्म मिलता, इसमें थोड़ी आजादी हमको, जो किरेमान कर्म हम करते हैं, जिस तरफ वो डालना चाहे अग्नि की हालत तुम बदल सकते हो। मैन इज मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी, इंसान अपनी किस्मत आप बनाता है, पीछे जो किया आप भोग रहे हैं। अब जो थोड़ी आजादी है उसमें अगर उसको ठीक करें, नरकों की तरफ जाने के सामान है तो इनके भोगो रसो में लोगों को दुख दो, सॉरी जाने हैं लोगों को सुख पहुंचाओ, अगर जन्म मन से रहत करना है तो वो भी इंद्रियों के घाट के ऊपर आ जाओ, उस रस को पा जाओ, ये रस पीके पड़ जाएंगे, आना जाना खत्म हो जाएगा। तो तीन चीजों आप उन्हें चीज पाकर कर सकते हैं।
तो तन धारी हारी भाजा ही न जे नर हो रात मंद मंद तर।
कहते हैं ऐसे मनुष्य पाकर जो हरि की पूजा नहीं करते, का भजन नहीं करते, कई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन के तेरी बरिया, समापुष यही करते, इट इज दाई टर्न टू मीट गॉड। मनुष्य पाकर अगर ये आत्मा को मन इंद्र से आजाद करके आने जाने के जो कारण है उनको हटाकर उस प्रभु से नहीं जुड़ लेता, इसका मनुष्य जीवन सफल नहीं होता। तो कहते हैं कि वो लोग विषय में मस्त होकर महामूर्ख और मूढ़ बन जाते। गुरु अमरदास जी साहब ने एक जगह कहा, त्रेग त्रेग खाया, त्रेग त्रेग सोया, त्रेग त्रेग कापड़ अंग चढ़ाया। हमारे खाने पर सोने पर जिस्म के बाहरी बनावटे हार सिंगार बनाने पर हजार हजार बार लाभ। फिर कहा, एक शरीर कुटुंब से कुटुंब सहत से इस मनुष्य जीवन के धारण करने पर भी हजार हजार बार, नानता और बाल बच्चों का ही काम करते रहा, इन कामों पर भी हजार हजार बार लाभ। જે તો હું ખસમ ન પાય. અગર મનુષ્ય પાકર પ્રભુ કો નહીં પાયા, જીતને કામ કિયે સબ પર હજાર હજાર પર અવર કાચરે કિતે ન કામ. આજ મેરે સાધ સંગત પાન કે સાધુ કા સંગ કરો, માલક કે સાથ જોડો, યે મનુષ્ય કા આદર્શ હૈ. અગર મનુષ્ય પાકર યે કામ નહીં કિયા તો જન્મ બરબાદ ચલા ગયા. તો કહેતે હૈ વો લોગ મનુષ્ય પાકર જો હરિ કા ભજન નહીં કરતે, ખસમ ના ચીને બાવરી ક્યા કરત બઢાઈ. કબીર સાહેબ કહેતે હૈ મનુષ્યન પાકર તુમ કિસ બાત કી બઢાઈ કરતે હો, અગર મનુષ્યન પાકર ઉસ માલક કો તુમને નહીં પાયા. બાત નું ભગત ના હોયંગે, છાડો ચતરાઈ, યે બાતું કા મજમૂન નહીં હૈ ભાઈ. ચતરાઈ કી બાતેં છોડો, દેખો તુમ ક્યા કર રહે હો, નરકો કે જાને કા સામાન કર રહે હો યા સ્વર્ગો કા યા મોક્ષ કા. યે સોચ, રેલવે લાઈન ડાલને સે પહેલે આપકો ખ્યાલ હૈ જિસ તરફ લાઈન ડાલ દો. એક બાર ડાલ દી ગઈ ટ્રેન ઉસી પર ચલે. ગુરુજી મેં થોડી આઝાદી હૈ, વિવેક બુદ્ધિ પ્રભુ ને દી હૈ. એક લાઈન ડ્રા કરે યા ઉધર કરે, યે મેક ઓર અનમેક કર સકતા. દેખ લો આપ ક્યા કર રહે. બડે ઠંડે દિલ સે બડે પ્યાર સે સમજા રહે કે મનુષ્ય બડે ભાગો સે મિલતા હૈ, ઇસકો પાકર યે તીન ચીજે તુમ કર સકતે હો. અગર મનુષ્ય પાકર આપને હરિ કો નહીં પાયા, ઉસકા ભજન નહીં કિયા, અપની આત્મા કો મન ઇન્દ્ર સે આઝાદ કરકે ઉસકે સાથ જુડે નહીં, મનુષ્યન બરબાદ ચલા ગયા. પૌડી છુટકી ફિર હાથ ના હોય આલા યંગ હોય. એક બાર મનુષ્યન કી પૌડી હાથો સે નિકલ ગઈ, યે જન્મ તો બરબાદ ગયા. ફિર યાદ નસીબ કા મનુષ્યન આપકો મિલે, ફિર તુમ યે કામ કર સકો. તો મનુષ્યન પાના બડે ભાગો સે હોતે. કિસકો પાકર જો લોગ પ્રભુ કી ભક્તિ નહીં કરતે, મોક્ષ કો નહીં પાના ચાહતે, નરકો ઓર સ્વર્ગો કા સામાન કર રહે હૈ, અરે ભાઈ વો જન્મ કો બરબાદ કર રહે. કુરાન શરીફ મેં જિક્ર આતા હૈ, જો ઇસ દુનિયા કે આશિક લોગ હૈ ઉનકો પરલોક આખરત હરામ હૈ, ઓર જો આખરત કે પુજારી હૈ ઉનકો યે દુનિયા હરામ હૈ, ઓર પ્રભુ કે પુજારીઓ કો દોનો હરામ. બતાઓ આપ ક્યા કર રહે. સોચો મહાપુરુષો કે કલામ બડે મતલબ ફેજ હોતે, પુરમાની પુરમલ હોતે. સાથ સાથ સમજાતે ચલે, અરે ભાઈ યે તીનો ચીજો કી પાને કી સીડી હૈ મનુષ્ય જીવન. તુમ ક્યા ચાહતે હો, જૈસે તુમને પ્રભુ કો પાના થા, ક્યા કરે. ઠંડે દિલ સે વિચારો, કઈ ભાઈ દાન કરતે હૈ કે આગે હમે રોટી મિલેગી, યહાં જૂતી દેતે હૈ કે આગે હમકો જૂતી મિલેગી. અરે ભાઈ તો ફિર પરલોક કે પુજારી હૈ ના, આના જાના તો ખતમ ના હુઆ, મનુષ્ય જીવન કી યે ગર્જ ના થી. જે
કાચ તીરચ બદલે તે લેહી, કરતે દાર પર સમણી દેહી.
કહેતે વો જાહેલ લોગ હૈ, મૂળ પુરુષ હૈ, જો પારસ કો પથ્થર કો ફેંક દેતે. પારસ પથ્થર મિલ જાય ઉસકો ફેંક દે, ઉસકો અકલમંદ આપકા હોગે, ઉસે તો સોના બનતા હૈ. બોલો જો બડે ભાગો સે મિલા, એસે તુમ આપની આત્મા કો પ્રભુ સે જોડ સકતે હો. જો ઇસકો પાકર એસે ફાયદા નહીં ઉઠાતે, વો એસે હૈ જૈસે સોને કે ઇવજ શીશા લે લે. ક્યા હુઆ, કાંચ લે. તો મનુષ્ય પાને કી યે કદર ધ્યાન કરના હૈ, મનુષ્ય પાને કી યે કદર હૈ. જો જાય લોગ હૈ, બૂઢ પુરુષ હૈ, જો એસે ફાયદા નહીં ઉઠાના ચાહતે. દેખો સાથ હી સાથ ડિગ્રી દિયે જા રહે હૈ. યહી ઓર મહાપુરુષ ભી કહેતે હૈ, પરમાત્મા હૈ પલકે ઉઠ પપોલીએ, બિન બૂજે મુગદ જાન, સુબહ ઉઠકર જિસ્મ કે પાલને ઓર ઇસકે તલકા કે બનાને હી મેં સારા જીવન બસર કર રહે હૈ. ઉસ પ્રભુ કો નહીં જાના, યે જાનતે હુએ કે મનુષ્ય ચંદ્ર ઉદાય આખર છોડ જાના હૈ. તો કહેતે એસે લોગ કૌન હો સકતે હૈ, કહેતે યા બૂઢો કે બૂઢ યા અનજાન બચ્ચે, ઇન દોનો મેં જરૂર એક હૈ. સારે મહાપુરુષ યહી કહેતે, પ્રાણી તું આયા લાહ લે, લગા કિત કો પકડે સમ મુક્તિ ચલી રહે. એ પ્રાણધારી ઇન્સાન તું દુનિયા મેં આયા થા, ઇસે પરમાર્થ હાસિલ કરને કે લિયે, તું કિન ફજૂલ કામો મેં લગ ગયા. વો ફજૂલ કામ કૌન સે હૈ, કબીર સાહેબ ને જિક્ર કિયા રાવણ કા. કહેતે સોને કી લંકા થી, સમજે, કુદરત કી તાકતો કો અપને કબજે મેં લાયા થા. તો કહેતે મૂરખ રાવણ ક્યા લે ગયા. वो मूर्ख रावण था, क्या ले गया यहाँ जिसम साथ आता है पैदा हुए होते हुए, ये पहला संगी और साथी है, जाते हुए साथ नहीं जाता है। अरे भाई वो चीजें जो जिसम करके बनी है वो कैसे जाएगी, जो उन्हीं में लग रहे हैं, अरे भाई वो बूढ़ लोग हैं, ना समझ लोग हैं, अनजान बच्चे हैं। बड़े प्यार से समझा रहे दे।
नहीं दरिद्र सम दुख जग माई, संत मिलन सम सुख जग नाही।
ये तो एक सवाल का जवाब दिया, क्या खूबसूरती से जवाब दिया। अब दूसरा सवाल आ जाता है कि दुनिया में दुख सबसे बड़ा कौन सा है और सुख किस बात में। तो कहते हैं मुफलसी से ज्यादा मुसीबत दुनिया में कोई नहीं, गरीबी, ये सब पापों की जमीन बन जाते हैं। भाई बार बार ठीक खरीद नहीं सकता, कर्जे पर कोई देता नहीं, वो चोरी पर गिर जाता, अपने धर्म से असूल से गिर जाता। अरे जर और धन के पुजारी दुनिया बन रही है। देखिए ये बीमारी सब जगह, नादारी, मुफलसी, गरीबी, सब से बड़ा दुख। इसमें इंसान क्या कुछ वो काम करता जो नहीं करना चाहता वो भी कर दे। बच्चे भूखे भरे क्या करे, चोरी करेगा, सन मारे, अपनी भूख तो शायद सहार जाए, बच्चों के से ही सहार सकता। जैसे ये बड़ा भारी दुख। आप देखिए अपने पैसे कमाने मुफ इसको दूर करने से लव लाल संयम का जीवन होना चाहिए। खटकाल के छत्थों दे नानक राह पछाने से जिसकी रोजी ही प्रागिंदा है, प्रागिंदा रोजी, प्रागिंदा दिन, ये सबसे बड़ा दुख। जिसको रोटी मिलती रहे फिर वो संयम में रहते, लव लालच न करे, जीवन संयम का बनाए, प्रभु की भक्ति करे। पेट में पेट न पहिया रोटियां से सब है गला खोटी, ये पंजाबी विचार। तो बड़े प्यार से कहते हैं कि वो खुशी सबसे ज्यादा दुनिया में दुख, और संतों के विलास से ज्यादा कोई सुख नहीं। सबसे बड़ा सुख कहाँ मिलता है, संतों की सौ संत मिलते कहाँ, सौ काल संत तो बड़े मिलेंगे, सच में संत कहीं कहीं संत की तारीफ की गई। हमरो पत्ता बड़ो बवे की आपे संत कहावे, जब वो परमात्मा किसी पोल पर इजहार करता है उसका नाम संत है। उसके पास क्या है, चार पदार्थ जे को मांगा है सात जना की सेवा लागे, चारों पदार्थ उसके पास हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, बड़ी भारी बरकत। बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि सबसे बड़ा सुख दुनिया में संतों की सोबत। परमात्मा तो देखा नहीं ना, माफ करना, जब तक तो परमात्मा देखा नहीं परमात्मा के चरणों में जाने में सबसे बड़ा सुख है, पर जब तक तो उसको देखा नहीं फिर गुरु प्रशिक्षवाद जिसमें वो प्रगट है उसकी सोबत में ठंडक मिलता है, वो सबसे बड़ा दुख है। झुलसा हुआ इंसान धूप में जब एक छायादार दरख्त के नीचे आ जाता ठंडक को पा जाता, होश आ जाता,